लाइफ के लिए हमेशा कहा गया है, जिंदगी के लिए जो कहा गया है कि लाइफ को हमको कैसे देखना है, कैसे देखना है। कहते हैं देखो तो ख्वाब लगे, जिंदगी ख्वाब लगे। देखो तो जिंदगी है ख्वाब, पढ़ो तो जिंदगी है किताब, है जिंदगी किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। और परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चों, मीठे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी, तो आसान है जिंदगी। तो क्या आप अपने ये बात लाइफ की, जिंदगी की परिभाषा क्या आप अपने घर में जाके बता सकते हो, बता सकते हो अपने बच्चों को कि जिंदगी क्या है, क्या है जिंदगी? देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। तो यहाँ किस लिए आए हैं? जिंदगी को आसान करने के लिए। आज का विषय यही है कि जिंदगी को आसान करने के लिए, कि और आसान, इतना इजी कि पता ही नहीं लगता है। तो ऐसा आसान जिंदगी बनाने के लिए, तो जो बहनें वर्क करती हैं, ऑफिस में जाती हैं, उनका क्या इसमें विचार है कि किस तरह से आसान जिंदगी बन सकती है, कैसे संतुलन बना सकते हैं? शेयर करेंगे कि हम संतुलन कैसे बना, कौन कौन बोलना चाहेंगे? आइए कि हम अपने वर्क प्लेस में भी, घरों में रहते हैं, वो भी कोई सेवा नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है। और जो वर्क में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कार्य व्यवहार में जाते हैं, वहां पर भी हमारी बहुत दोनों को बैलेंस बनाकर चलना और मिलके चलना, कदम के साथ कदम चलाना, कितना प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए ना उसके लिए। इसलिए आपका क्या विचार है इसमें, अपना कोई अनुभव सुनाइए। आइए, आप सब नोट करना जो भी बोल रहे हैं।
मैं दीदी मराठी में, ओके ओके, थोड़े मिस्टिक, हाँ वर्ड खूब। मेरा नाम है मनीषा प्रशांत बोंद्रे, मैं जनरल मैनेजर हूँ श्रीराम अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी चिखली, डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा, महाराष्ट्र से। मैं जनरल मैनेजर होने की वजह से मेरे हाथ के नीचे 45 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उधर भी सुख दुख शेयर करने पड़ते हैं और वहाँ पे भी पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। इसके बावजूद 13 डायरेक्टर्स है, जहाँ एक मैनेजर बोलते हैं तो जैसे मनता अपना दुआ असतो, मैनेजर हा डायरेक्टर आणि एम्प्लॉईज मधला दुआ असतो, तर मला त्या तिथे पण माझी कसरत आहे। आणि त्याच्यानंतर माझा परिवार म्हटलं तर, हा ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, कंटिन्यू और घर पे फैमिली का बोलेंगे तो घर पे 84 इयर्स के मेरे पिताजी है, खुद के पिताजी है मेरे, जो अभी पूरा उनका बेड पे चलता है, और ब्रदर आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, उनसे कुछ नहीं होता, पिताजी मेरे पास है, दोनों टाइम उनका डायपर बदलने से पूरा करना पड़ता है। बाद में 80 इयर्स के सासू भाई है, मेरी सासू माँ है, लेकिन उनका कुछ नहीं करना पड़ता है, उनकी हेल्प होती है मुझको, यस उनकी हेल्प होती है, लेकिन अभी यहाँ आने पर उनकी आंख के ऑपरेशन हुए, वो अभी घर पे एक जगह पे हो भी, और मुझे यहाँ आना था ड्यूटी से छुट्टी मनानेगी, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक का जून जुलाई में ऑडिट चलता है, तो मैंने ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया कि मेरा माउंट आबू जाने का प्रोग्राम है, तो उन्होंने ऑडिट का समय 15 के बाद दिया, ये मैनेज करना पड़ा दीदी। बाद में घर पे पिताजी के पापा के लिए एक रखा वर्कर वहां पे, फिर भी बेटे को बोला, बेटी पुणे में पढ़ती है सीएस, तो उसको बोला बेटी तू 7-8 दिन ऑनलाइन क्लास कर ले और दोनों टाइम दादी को पढ़े और मामा को पढ़े, दोनों को तू टाइम कुकिंग का काम कर, बाकी काम हो जाएगा। मेरे लिए कोई वर्क करने वाली उमर नहीं, मैं सुबह से उठकर खुद पापा का भी करती, सासू भाई का भी करती, कुकिंग का भी करती, फिर डेटे 10:30 बजे ड्यूटी पे जाती हूँ, फिर 6 बजे बीच में मुझे एक चक्कर यहाँ पे डालना पड़ता है, पिताजी का यूरिन बैग फील हो जाता है, उनको पोस्टेड का प्रॉब्लम है, वो जगह से उठ नहीं सकते खाली करने को, फिर बाद में और ड्यूटी पे चली जाती हूँ, वहां से आने के बाद 6 बजे दिया बत्ती हो जाता है, सासू माँ उतना कर लेते हैं कि क्लॉथ वगैरह अपने ड्राई वाले निकाल लेते हैं, उनसे जो काम बनता है वो करती है, वेजिटेबल्स कटिंग करके देना, अभी तो बच्चे चली जाएंगी, लेकिन यहाँ आना एक ये था, इससे पहले मैं आई हुई 2022 में आई थी, जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, हस्बैंड की डेथ हुई थी, 5 साल हुए थे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, उससे पहले 5 साल मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, और मैं जब यहाँ आई थी उस बार में मैंने स्टेज पे बोला था कि मुझे यहाँ क्या अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड दायरे के अचानक से अटक के गए, रात को बातचीत करें घूम के आए, उन्होंने मुझे नाश्ते में बनाए थे कि मुझे कल सुबह उपमा बना के देना नाश्ते में, और सुबह में उठे हो रही बहुत अंदर चौके उठे रही, और ऐसी सिचुएशन में अभी बच्चे भी पढ़ रही थे, रंग में एक क्लास में थी जब वो अभी सीएस कर रही है, फर्स्ट ईयर एक सीएस का, तो हमें उसको भी देखना पड़ता है, और जनरल वाले 45 मेरे एम्प्लॉयर जो मेरा पढ़ा है, और उनके साथ साथ लोन डिस्ट्रीब्यूटर जिनका डिपॉजिट बैंक में रखा है उनको भी पूरा सेटिस्फेक्शन होना, उनका पैसा है जिसकी वजह से सोसाइटी अच्छी चल रही है, हमारा प्रेसिडेंट बहुत कॉपरेटिव है, पूरा डायरेक्टर बोर्ड भी अच्छे है, जो मुझ पर पूरा उनका फैक्ट है, उनका विश्वास है मुझ पर, और मैं जब भी छुट्टी आएगी तो वो शहर आएगी, छुट्टी नहीं रहेंगे और घर पर भी पैरा रहेगा, तो मैं सबका शुक्रिया करता हूँ और कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मेरा कर्तव्य समझ के, और मेरा सीख भी मैं यहीं से लू कि अपना कर्तव्य करना चाहिए, पहले दीदी ने अभी पूछा था आप काय को इम्पोर्टेंट होगी, फैमिली तो छोटे दीदी की पिताजी सासू माँ बच्चे, लेकिन वर्किंग के जगह पर कम से कम 5000 डिपॉजिट डाल रहे और मेरे बच्चे बैठे रहे, और एम्प्लॉयज में मेरा परिवार है, वहाँ पे मेरे भाई बहन मेरे साथ काम करते है, हर एक के साथ बताए, अभी चिकित्सा सेंटर से आ रहे, इससे जब टाइम होता है तभी मैं सेंटर पे जाती हूँ, तो दीदी से कभी कभी राशन मांग लेती हूँ, दीदी आना ही बना जैसा, कोशिश कर रही हूँ अपना कर्तव्य दो तो पूरे कर सकूँ, आप सबका बस और शांति,
और भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। देखो इनको, इन्होंने जो मैंने जो रीड किया, इनके अंदर क्वालिटी की वे सेंटर से कनेक्ट है, राइट, तो वो जो ऊर्जा मिलती है वो मेडिटेशन करते हैं उससे जो हमारा मेंटल पावर स्ट्रांग होती है, तो हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, जो स्ट्रांग हो जाते वो तो सब कुछ कर सकता है ना, तो ये मेंटल पावर हमको यहाँ से मिलती है।
ओम शांति, मेरा लौकिक नाम डॉक्टर रूपा गुप्ता, मैं इस समय केंद्रीय हिंदी संस्थान में आगरा से हूँ, और उसमें मैं एज अ प्रोफेसर पढ़ा रही हूँ विदेशी स्टूडेंट को, जो फॉरनर्स स्टूडेंट आते हैं उनको हिंदी, उससे पहले मैं थोड़ा अपना, जैसे बैलेंस वाली बात चल रही है ना, परिवार और वर्क प्लेस में कैसे बैलेंस बनाना है, तो मैंने मेरे भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आए और मैंने भी उसको बैलेंस बना के आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो भी हूँ बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मैं अपनी सेवाएं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ, और मेरे स्टूडेंट मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मतलब अब वो लोग 1 साल के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, बट वो बराबर कॉन्टेक्ट में रहते हैं मुझसे, मतलब कहते हैं मैम आप जैसी मैम मिलना मुश्किल है, बिल्कुल मदरली जैसा आपने हमको प्यार दिया। हाँ, उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब मेरे, हाँ नहीं नहीं मैं बस थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि मैंने फैमिली, जब प्रायोरिटी हमारी फैमिली की होती है तो हमको उस समय वो भी देखना होता है, तो जब मेरे बच्चे छोटे थे 2004 में मेरी बेसिक वाली जॉब लगी थी, जो गवर्नमेंट जॉब होती है प्राइमरी टीचर्स की गवर्नमेंट, 1 साल मैंने ट्रेनिंग और वो सब भी किया, ज्वाइन भी कर लिया, बट वो बहुत दूर था मेरा जो स्कूल मुझे मिला था, मैनेज नहीं हो पा रहा था, फैमिली से भी इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था उस समय, हस्बैंड भी बहुत बाहर वगैरह रहते थे। एनीवे वो जॉब मैंने छोड़ दी, मतलब क्विट कर दिया, रिजाइन कर दिया, कोई नहीं। उससे पहले मैं सेल्फ फाइनेंस में स्टार्टिंग से पढ़ा रही थी, मैं पीएचडी हूँ एजुकेशन से, तो बीएड एमएड क्लासेस लेती थी, तो वो मेरा जॉब चल रहा था। एनीवे वो चलता रहा, पर मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, बच्चे छोटे थे, मैनेज नहीं हो पा रहा था। उसके बाद अभी लास्ट के 6-7 साल पहले, मतलब 5 साल के लिए मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, मतलब हमेशा से, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ नहीं थे, तो उनकी जिम्मेदारी, वो एक बार गिरी तो जो उनके कूल्हे की हड्डी टूटी, वो बिस्तर से नहीं उठ पाई और वो बैट पकड़ लिया उन्होंने। जैसे आपने अभी बताया, मैंने भी अपनी मदर इन लॉ के डायपर बदले हैं, वो सारी सेवा करी। मैंने 5 साल जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैं उस समय सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में थी, मुझे लगा अब इस समय मेरी प्रायोरिटी मेरी सासू माँ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, मतलब वो और मैं ही हैं। एनीवे पर कोई नहीं, मैंने उनकी सेवा की पूरी तरह से, और मैं ज्ञान में अपनी शादी से पहले ही चलती हूँ, 91 से। सबसे पहले मैं माउंट आबू मैं ही आई थी, मेरी मम्मी ने चलना शुरू किया और जो एक शिविर आ रहा था तो उसमें सबसे पहले मैं ही आई थी अपने घर से। चलिए, तो वो मैंने सासू माँ की, उसके लिए मैंने वो भी जॉब छोड़ दी, गवर्नमेंट जॉब बच्चों के लिए छोड़ी, फिर अपनी जो डिग्री कॉलेज की जॉब थी वो सासू माँ की सेवा के लिए छोड़ी। बट बाबा है ना, वो तो देखता है, उसने कहा अब तुम्हारी, फिर मेरी सासू माँ 21 में ऊपर चली गई, ठीक है, बस वो गई है, मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। फिर मेरा केंद्रीय हिंदी संस्थान में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वहां मेरी जॉब लगी है, अभी 3 साल हुए हैं लगभग, ठीक है। तो अब मैं वहां पे जॉब कर रही हूँ, और मैं, क्योंकि मैं ज्ञान में चलती हूँ, तो मुझे देख के, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं है बट बाबा का ज्ञान है, तो जो मुझसे मिलता है वो यही कहता है, मैम आपकी बातें, आपका एटीट्यूड, मतलब वो दिखता है, आपका अलग ही दिखता है कि हाँ आप ज्ञान में चल रहे हो, बाबा के आधार में। तो बस यही, तो ऐसे मैं बैलेंस करती हूँ, और मैं भी घर का सारा काम करती हूँ, मैं खाना खुद ही बनाती हूँ, ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, बेटी एमबीए कर रही है, बेटे ने एमबीए करके हस्बैंड के साथ बिजनेस संभाल रहा है। मैं घर का खाना सुबह का, शाम का, लंच, डिनर प्रॉपर बनाती हूँ, मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है, ठीक है। ओम शांति।
आकर आइए, आप भी ज्ञान में चलते हैं।
हम नेपाल से आए हैं, हमारा नाम पार्वती बिष्ट है, हम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, पब्लिक हेल्थ में काम करते हैं, और हमारी सर्विस अभी 13-14 साल हुई है नेपाल गवर्नमेंट में। और हम यहाँ पर इसी के लिए आए थे कि हम, हाँ सब चीजें बोले तो हम वर्क प्लेस एंड फैमिली को कैसे हैंडल करें, वो हम सोच रहे थे कि यहाँ 3 दिन से तो हमें बहुत जानने को मिला यहाँ। और हमारा एक्सपीरियंस क्या था, हम इससे पहले भी जब नेपाल गवर्नमेंट ने हमें अच्छा काम किया था तो अवार्ड दिया था, उसमें एक इंटरव्यू लिया था, हमने उसमें बोला था हम देश के लिए तो अच्छी बेटी बन गए लेकिन अपने बच्चे के लिए अच्छे नहीं बन पाए। तो हमें रिग्रेट था कि कहीं हम जो है ना वर्क प्लेस को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे के कहीं अपने बच्चे को टाइम ना दिया। तो क्या हुआ था, जब हम पब्लिक हेल्थ होते मतलब स्वास्थ्य में काम करते तो वो हम सोल्जर जैसे होते हैं, जब डिजास्टर आए, क्लाइमेटीज आए, जो भी हो, एक्सीडेंट हो, कुछ महामारी आ जाए, सबसे पहले जैसे पुलिस आर्मी खड़े होते हैं ऐसे स्वास्थ्य कर्मी भी खड़े होते हैं। तो हमें जब स्पेशली पहले तो समस्या नहीं थी क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर इतनी ज्यादा सपोर्टिव है, हमारे मम्मी पापा सास ससुर, हम बहुत लक्की है। लेकिन क्या हुआ था, आपके जब बीमा होता है ना उसके बाद बहुत सारी चैलेंजेस आ जाती है। तो वहां पर जब हमारी बेटी 1 साल की भी नहीं थी तो कोविड-19 का महामारी आ गया था। तो हम जो सेंटर हमारी कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल है काठमांडू के, उसके कोविड के फोकल पॉइंट हो गए थे। तो इतना हम 22 घंटे काम करते थे ऑलमोस्ट 2 आवर्स। तो 1 साल की लड़की को छोड़कर हम उस वक्त हमें पता नहीं होता कि हमारी बेटी है क्योंकि हम इतने ज्यादा बिजी हो गए काम में। पहले से ऐसे थे हम कि हमारे पापा भी पुलिस में है तो उन्होंने सिखाया कि कैसे अपने देश के लिए सेवा करना है। तो हम इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, जब काम करते हैं तो हम घर के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं।
और हमारे घर का कार भी नहीं करते हैं, हर प्लेट में उठाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। हमें अब तो झाड़ू पोछा भी लगा लेते हैं क्योंकि कभी कभी वो काम नहीं करते तो हमें उन्हें काम करने के लिए ना खुद ही आगे चलना होता है। तो हम सब करते हैं लेकिन घर में कुछ नहीं करते थे क्योंकि सभी हमारे पेरेंट्स लोग कर देते थे। तो जब कोविड आ गया तो हमारी बेटी हमसे दूर हो गए, हम अकेले काम करते रह गए इतना ज्यादा कि हम खुद को भी भूल गए। और हमें पता नहीं था कि इस काम करने से हमें कोई अच्छी क्या बोलते हैं इसको अवार्ड मिलेगा, वो पता नहीं था क्योंकि हमें वो अवार्ड का नाम भी पता नहीं था जो नेपाल का सबसे बड़ा अवार्ड है, प्रेसिडेंट अवार्ड राष्ट्रपति से मिलता है। और उस अवार्ड पाने से पहले जो हम जो क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर चला रहे थे वहां पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की टीम हर लोग सिक्योरिटी टीम के साथ थे, वो सब लोग इतना ज्यादा प्यार करते थे लेकिन उस सब ने बोला कि तुमने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। तो उन्होंने उधर सारा रिकमेंडेशन किया कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल से और हमने वो अवार्ड ले लिया। लेकिन उसके बाद हमें जो नारी दिवस होता है उसमें प्रेस्टिजियस ओएस अवार्ड भी मिला, तब भी हम इतना ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि हर वो सोच रहे थे कि हमारे साथ साथ हम बच्चे को क्यों नहीं देखे क्योंकि उसके तो राइट है ना, साल में उसमें तो 90% डेवलपमेंट तो बेबी का होता है तो उससे क्यों हमने मैं उसको टाइम दिया। बाद में उन्हें आकर सोचा कि एक भाई से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि हजारों लोगों की सेवा की है, उनके ब्लेसिंग से हर जो सबसे ज्यादा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है मास्टर डिग्री करने के लिए नेपाल में एक एग्जाम होता है उससे सिलेक्शन होना पड़ता है, उसमें एक बार आने पड़े थे लेकिन हमारे मेरिट लिस्ट हाई स्कैन के आके हम स्कॉलरशिप में पड़े और उस साल है ये जो क्या होता है वो सुपर नेचुरल पावर जो होती है जो ब्लेसिंग्स होती है ना उससे इतना ज्यादा आपको फायदा हो जाता है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मंदिर में जाओ मस्जिद में कहीं भी जाओ हमें ये दे दो ये नहीं कहना पड़ेगा, अगर आप सच्चे हैं किसी के आपसे पूछे और सच्चे हैं किसी के काम लगे। तो यहाँ हमारे भाई ने बताया कि अगर तुम्हारे वाकों के बारे बताने में तो पत्ते ज्यादा खटे हो तो एक एक से हमारे फसल है ना वो तुम अब पूरा कर लो, अब 12 साल तक तो है अभी भी टाइम, तो ये 6 से 12 साल इतना टाइम दो थे वो जो बीते 6 साल थे वो भूल जाओ, ये हमने यहाँ पर सीखा। और सबसे ज्यादा क्या होता है कि वर्क प्लेस में इतना ज्यादा हम एंजाइटी में था कि हम यहाँ शांति में यही सीखने आए थे कि कैसे हम हम सबसे में देश के लिए तो बहुत अच्छे हैं लेकिन फैमिली के लिए हम खुद भी सोचते हैं कि हम अच्छे बेटे भी नहीं है, अच्छे वहां भी नहीं है और अच्छे बेटे भी नहीं बन सके शायद, लेकिन कंट्री के लिए बहुत ज्यादा करते हैं करते रहेंगे सदा करते लिए। हाँ पहली बार आए हमें ये पता भी नहीं था कि यह क्या होता है, जो ऐसे भरोसे गए शांति भवन क्या वो नीचे का भवन है ना शांति भवन वहां पर गए थे, वहाँ इतना ज्यादा दादियां थी और दादी क्या होती है। तो हमने हमारे भाई से बोला कि हमारे एक दादा ने कितने दादा से शादी की, तो हमें तो हमें पता नहीं था कि उन शांति में एक दादा को बोलते हैं और दूसरा होता है। तो यहाँ आकर हमने बहुत सारा सीखा और जो ज्ञान यहाँ से मिलता है स्पेशल वो हमने फैमिली को ले जाएंगे और विथ स्माइल फैमिली को भी कंट्रोल करेंगे और देश को भी जैसे अब करते आए अब भी करेंगे हमेशा करेंगे अपने देश के लिए। थैंक यू सो मच।
ओम शांति।
फर्स्ट टाइम यहाँ जो आई थी वो मेरी देरानी है, हम एक ही परिवार से हैं। जब मेरी शादी हुई मेरे दो भाई एक एसपी एक डीवाईएसपी है, मेरे एक बहन भी लेक्चरर है नागपुर में, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरा नाम शुभांगी बोंद्रे, मैं स्कूल टीचर हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरी घर की परिस्थिति एकदम सॉफ्ट पोजीशन थी, मेरी लैंग्वेज मराठी इसकी वजह से थोड़ा ये हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट पोजीशन थी, मेरे पापा भी पिप्पी होते, इसके वजह से साउंड पोजीशन होने के कारण जब मेरी शादी हुई तो यहां आने के बाद में जब हम रहने लगे मेरी शादी के बाद इनकी शादी हुई 6 साल बाद, तो इकोनॉमिकली कंडीशन इतने डाउन पोजीशन में थी कि मैं तो एक तारीख को इनकी पगार हो गई कि रोना शुरू हो जाती थी, क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं थे, एक रुपया भी बचता नहीं था, जो उधर है वो बाकी की बाकी रहती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि 15 रुपए थे सिर्फ और हमने पूरा मोहरा गुजारा उसमें, आधा लीटर दूध लेना तब सस्ता ही थी, इतनी ये नहीं थी, तो 2 रुपए का दूध लाना उसमें पानी डाल के वो 8 दिन पुराना, और जो पालेबाजी बोलता पालक वगैरह थी वो भी बहुत सस्ती मिलती थी, 1 रुपए की जोड़ी ऐसी मिलती थी, वो लाना वो भी 3-4 दिन चलाना, ऐसा करके हम दिन गुजार रहे थे। लेकिन फिर ऐसा होने के बाद में जब हम प्रेग्नेंट रहे तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि नहीं पॉसिबल, लेकिन हमारा बोला अगर तुम्हारे से प्यार करती है तो वह अपने प्यार के निशान है, हो जाएगा। मैंने उनको बार बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि मेरी घर की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। पहली बार मेरा भैया मेरे यहाँ आया मेरे को देखने के लिए, और जब मैं रो पड़ती थी और जाते टाइम वो पैसे रख के जाते था, तब मेरी सास मेरे को बोलती थी तो वह खुश नहीं है इसकी वजह से, तेरा भाई पैसे रख के जाता है क्या। मैं उसको बोला बस छोड़ दो, तो मत दो पैसे, इनको भी पसंद है, जो भी है ठीक है। मैंने कभी उनको बताया नहीं, लेकिन वो समझ जाता था। ऐसा होते होते फिर मैंने सोचा कि अपना इनका अगर मेरे पे विश्वास है, प्यार पे विश्वास करना है तो इनके साथ देना है। तो फिर मैंने कैलीग्राफी क्लासेस वगैरह से छोटे छोटे ज्वाइन किए। बाद में मैं एक स्कूल टीचर बनी, तो स्ट्रगल करते करते आ गई, गाड़ी लाइन पे आ गई। आने के बाद में जब संस्कार होने की बात कर हुई थी, तो मेरे अकेले बच्चे को, एक बच्चा है मेरा, अब वो ऐसे ऐसे बैंक में मैनेजर है वाशी भाई, वो एक बच्चे को पढ़ाया और स्कूल में एक बैच, मतलब जब एक क्लास उनको मिलती थी, एक दो क्लास मिलते थे, तो 7 क्लासेस को उनको पढ़ाया पड़ता था। मतलब वो हमारे 450 बच्चों को हम पढ़ाते थे, तो 450 बच्चों को पढ़ाना अलग बात है और खुद के बच्चे को पढ़ाना बहुत अलग बात है। ये बैलेंस करना मेरे को बहुत ही मुश्किल होता था। एकदम ऐसा हो गया, एक दो मिनट एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। बैलेंस वही वही बैलेंस कैसे कि एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे ने स्कूल में से पेंसिल चुरा के लाई, डांट तो नहीं सकती थी लेकिन उसे निकलना भी जरूरी था कि कैसे चुराई, तो उन्होंने पेंसिल कहाँ से लाई, तो बोले क्लास में मिल गई, किसी का तो भी बर्थडे था, क्लास में 25 बच्चे थे। मैंने उसको बोला किसका बर्थडे था, मुझे पता नहीं, ठीक है, मैंने बात छोड़ दी। उसके बाद में उसको रात को मैंने पूछा, जब मैं उसको सुनाने गई तो उसके सब बच्चों के नाम बताए, फिर मैंने बोला कि अब्दुल इसमें से कौन सा किसका बर्थडे था, उसको लगा मैं पकड़ गया, तो बोले तेरे को कैसे पता चला। मैंने बोला मेरे भगवान ने बताया, भगवान सबको देखता है, जो झूठ बोलता है उसको सबको देखता है, बोलता तो झूठ बोलते हैं, मम्मी भगवान नहीं है, जब पापा भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को पानी में रखते, जब तक वो उठाते नहीं वो खुद उठते नहीं, वो नॉन मरेंगे। फिर मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, फोटो दिखाए, नाना नानी के दादा दादी के फोटो दिखाए, उसको बोला नाना नानी उधर है, फोटो इधर है, वैसे भगवान इधर है, फोटो इधर है और वो उधर है। फिर भी उसको ये सेट नहीं हुआ। फिर लेकिन उसने वो क्वेश्चन छोड़ा नहीं, मैं तो भूल गई कि मैंने उसको बोला था घर के। एक दिन स्कूल से आने के बाद में वो दौड़ दौड़ के आया, मम्मी मेरे को पता चला कि भगवान को कैसा पता चलता है। मैंने बोला कैसे? भगवान की यहाँ सीढ़ी प्लेयर है बोली, और पृथ्वी गोल है, उसने क्या करके पृथ्वी के सीढ़ी सीढ़ी प्लेयर में डाले और देखे बोले कौन कौन झूठ बोल रहा है करके। तो तब से मैंने सोचा कि नहीं, मैं बच्चे से बहुत सीखी हूं, मैं अगर बोलती हूं तो झूठ नहीं बोला, लेकिन कभी कभी मेरे को उसको उसके साथ झूठ बोलना होता है, वो मूल्य से अधिक है। और स्कूल में जब पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स को साथ मैंने, उसने मेरे को बोला, वो हाइट में बहुत ज्यादा है तो उसने बोला कि मेरे को हरदम पीछे बैठना पड़ता है, तो मैंने उसको बोला कि जब भी टीचर पढ़ाता है सबसे ज्यादा,
और भी बोलेंगे, देखो
21 सेकंड,
दो दो मिनट का अगर करेंगे तो आप सबको टाइम, क्योंकि टाइम भी हमारा लिमिट में है आज।
तो मैंने उसको बोला कि टीचर की सबसे पहले लास्ट में नजर जाती है, इसके वजह से जो होता है स्कूल में टीचर जो करते हैं वो सही करते हैं, और उसको मेरे पे भी रिस्पेक्ट होगा कि मेरी माँ भी टीचर है और वो मदर है, इसके दोनों हम एक दूसरे से जुड़ते, ये मतलब सीखते थे। शुभांगी बोंद्रे, बोंद्रे, थैंक यू वेरी मच।
दो दो मिनट में अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे तो हम सब शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ।
ओम शांति, मेरा लौकिक नाम है,
और टॉपिक है उसी पर हम बात करेंगे, और ऐसे फैमिली की तो बहुत सारी कहानियां हैं।
मैं आसाम से आया हूँ और मेरा लौकिक नाम है रीना गुहाई। मेरा फैमिली और वर्क प्लेस में मैं ऐसे सोशल वर्कर हूँ, और मेरा जब लड़की पैदा हुआ तो एक साल का था, मेरा दो लड़का और एक लड़की है। जब एक साल का हुआ तो मुझे पार्टी में आने का मौका मिला, तो पार्टी में आया, हम जीत गया। जीतने का बाद मेरा लड़की का बहुत बीमार हुआ, तो डॉक्टर का पास गया, डॉक्टर का पास एक महीना रुकना पड़ा, तब तो मुझे पता चला जो लड़की का VSD है। VSD मतलब हार्ट में सेड है, वो भी 6 पॉइंट कितना है, मतलब ज्यादा है। तो डॉक्टर ने बताया अभी उम्र बहुत छोटा है, इसको सर्जरी करना पड़ेगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगा। तो मुझे इतना अफसोस हुआ जब मैं कहाँ पड़ा गया, न घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे। तब लड़की आस्ते जो कमा में चला गया रहा, आस्ते आस्ते वो ठीक होने लगा। जब ठीक होने लगा एक महीने के बाद मुझे छुट्टी दिया। छुट्टी होने के बाद मेरा घर में शिव जी का मंदिर है, मैं आके बाबा को बोला, बाबा मुझे देना ही था लड़की तो, मतलब अच्छा देना था, तो जो बीमारी दिया है वो मेरा हाथ का भी नहीं है, और अब दिया है आप ले जाने से ले जाओ, रखने से रखो। तो ऐसा जो बोला, तो थोड़ा दिन के बाद फिर जो इलेक्शन म्यूनसिपलिटी का जो चेयरपर्सन सुना गया, वो रिजर्वेशन कोटा था, तो मुझे वहां पे चेयरपर्सन मिला। तो चेयरपर्सन होने का बाद जब घर में जो पब्लिक आने लगा, बच्चा को दूध पिलाना खिलाना, फिर दो बच्चा को स्कूल भेजना, ये सब करने में मुझे इतना हिम्मत आया, मैंने बोला बाबा को बच्चा संभालेगा, और मैं गया। मतलब सुबह से हम चला जाता है, शाम को आता है, और किसी घर में, जैसे मेरा माँ पिताजी का घर पास में है, और मेरा कोई नौकर चाकर नहीं था, मेरा हस्बैंड नौकर चाकर से खाना बनाना किचन में जाना ये सब पसंद नहीं करता है। तो मुझे जब 2004 से 9 तक मैंने म्यूनसिपलिटी का चेयरपर्सन था, तब 10 में सबुआ डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मैं डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और डिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा सेंटर हुआ, जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी था, ओपनिंग सेरेमनी में मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया। जैसे मेरे उस टाइम मैंने चेयरपर्सन खत्म हुआ था, तो मैंने वहाँ गया, जब फ्लैग होस्टिंग किया, फ्लैग होस्टिंग में बाबा का परिचय मिला, हाँ मैंने सोचा अभी मेरा इसमें मेरा काम है। तो उस दिन से मैंने बाबा से मेरा जो समस्या है हर दिन बोलने लगता हूँ, बाबा आपका आत्मा हूँ तो आप ही हम लोग को संभालिए। तो ऐसे करते करते मेरा जो लड़की है अभी गुवाहाटी में स्वस्थ हो गए, गुवाहाटी में कॉटन कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, वो केंद्रीय सरकार से स्कॉलरशिप मिल रहा है और बाबा का ज्ञान से चलता है।